खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो जी। शुक्रिया जी आप सबकी तवज्जो के लिए, मोहब्बत के लिए और सारी जस्तजू के लिए कि आप अपने कलीसियाओं को, खानदानों को छोड़कर इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं ताकि हम खुदा के कलाम का क्या कर सकें जी, मुतालिया कर सकें। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और दुआ करेंगे और अपने इस अगले सेशन को खुदा के पाक नाम से शुरू करेंगे, क्योंकि जो काम उसके नाम से शुरू किया जाता है खुदावंद उसमें बरकत देने के लिए क्या है जी, सरगर्मे अमल है। सो आए हम दुआ करें। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी गई तमाम नेहमतों बरकतों के लिए। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे कफारे के लिए। खुदा पाक रू तुझे धन पाक कहते हैं तेरी तसल्ली, इत्मीनान, रहनुमाई और उस्तादी के लिए। और खुदावंद खुदा तेरे तहरीरी कलाम के लिए, उन तमाम नबियों, पैगंबरों के लिए, शिगिर्दों के लिए, खुदावंद खुदा जिन्होंने इस कलाम को कलम बंद किया तेरे रूह की हदायत से, उन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। अब जब इस रोशनी को खुदावंद खुदा अपना रहनुमा किताब बनाकर इस्तेमाल करें तो खुदावंद तेरा पाक रूह हम सब के लबों का, सोचों का, ख्यालों का, दिलों का रहनुमा बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाप उसकी 16वीं आयत में यूं कहता है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तलीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जब हम लफ्ज अल्हाम को देखते हैं तो क्या है जी, खुदा की सांस, खुदा का दम इसे कहा गया है, यानी कि उसके मुंह से निकले वाले वो क्या है जी, पैगामात हैं, वो कलमात हैं जो क्या है जी, कलम बंद किए गए, इसे अल्हाम कहते हैं। और इसके देने का मकसद एक ही है, ताकि मर्द खुदा कामल बने, उनको फायदा पहुंचे। इसलिए आए हम अपने इफ्सियों के खत के खाका की तरफ जाएंगे और पहले 3 बापों में से हम पहली 14 आयात को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और इसमें से पालूस रसूल के उस दिल को जो उसने रूह की मामूरी में जंजीरों में जकड़े हुए लिखा है। जब हम इस खत को देखते हैं तो ये खत क्या है जी, कैद खाना से लिखा गया वो खत है जो क्या है जी, अलाही मकाशवाद का भेद है। इसलिए हम जब हम पे देखते हैं तो पहली बात क्या है जी, वो क्या है, द हेवनली पोजीशन ऑफ क्रिश्चियन इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में मसीह का आसमानी मुकाम। हम आसमानी लोग हैं लेकिन जिस्मानी तजर्बात में से गुजर रहे हैं। हम आसमानी लोग हैं लेकिन जिस्मानी तजर्बा से गुजर रहे हैं कि इस जमीन पर रहते हुए इस फानी बदन में उस गैर फानी के लिए क्या हो जी, उम्मीद, भरोसा और उसके लिए क्या है जी, मुंतजर रहे। इसलिए ये पहले 3 अबवाब हैं, इसमें हमारा मकाम बयान किया गया है। इसलिए हम जो पहले 3 बापों में जो पहला बाप है इसकी जब हम 14 आयात को देखते हैं तो इसमें क्या है जी, खुदावंद यीशु मसीह में जो रूहानी बरकात हर फर्द बशर को हासिल है जो उसमें है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में हमारे लिए रूहानी माल मता, रूहानी माल मता। जब हम पहले बाप की 4वीं आयत से 14वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो इसमें ये सारा रूहानी माल मता हमें मिलता है। और यहां पर खुदा का बंदा पलूस यूं कहता है इन पहली 4 आयात में, जिसमें से हमने पहली 2 आयात को पढ़ा है, और पलूस रसूल कहता है उन मुकदसों के नाम जो इफ़सस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। और हमारे खुदा और हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और यहाँ पर वो शुरू करता है रूहानी बरकत से, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जिसने हमको आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। जब हम इस आयत को देखते हैं तो ये आयत क्या है जी, इस आयत के अंदर बहुत कुछ है, काश के मेरे पास वो गुड़िया होती, उस गुड़िया को क्या कहते हैं जी, कि गुड़िया के अंदर गुड़िया, गुड़िया के अंदर गुड़िया। वो तकरीबन एक बंदे ने किसी मुल्क में बनाई तो उसने एक गुड़िया में 53 गुड़िया को उसने क्या कर दिया जी, बंद कर दिया। कि वो एक को उतारता था, उसके अंदर से एक और निकल आती थी, एक और निकल आती थी, एक और निकल आती थी। वैसे ही जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा ने, खुदा की हमद हो जिसने हमको मसीह में, जब हम मसीह के अंदर इन तमाम बरकात को गिनना शुरू करते हैं जी, तो वो क्या है जी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इन बरकात को जब हम देखते हैं तो इन बरकात को बयान किया गया है कि खुदावंद की तरफ से, खुदा बाप की तरफ से कौन सी क्या है जी, बरकात है, कौन सी बरकात है जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है, और कौन सी बरकात है जो खुदा बेटे की तरफ से है, और कौन सी बरकात जो है जी रूल कुद्दस के तरफ से है। इसलिए इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इससे हमें बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। सो यहां पर जब हम पढ़ते हैं इस हिस्से को तो यहां पर क्या है जी, रूहानी बरकत बख्शी। सो इसलिए चौथी आयत से शुरू करेंगे और चौथी आयत को जब हम देखते हैं तो इफ़सियों 1:5 उसकी 4-6 आयत में ये वो बरकत है जो बाप की तरफ से है। और इस पर हम गौर करेंगे, पहली बरकत क्या है जी, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसमें चुन लिया। जब खुदा ने आदम को अपनी सभी और सूरत पर बनाया तो उसने क्या किया, उसमें हर एक को जो पैदा होगा उसके लिए क्या रखा है जी, एक मंसूबा रखा था। इसलिए खुदा ने बनाए आलम से बेशतर हर फर्दे बशर को चुन लिया। और चुनने की वजह क्या है जी, इसमें जो कलीदी बात है, जो मसीह में है वो चुना गया हुआ खुदा का बंदा और बंदी है। इसलिए बलाए आलम से बेशतर उसमें चुन लिया, किसमें जी, यीशु मसीह में। खुदा को पता था कि आने वाले 2000 साल बाद या 1000 साल बाद कौन किस जगह पर, कहां पर, कैसे, किन हालात में, कब उसको पैगाम दिया जाएगा तो वो उसे कबूल करेगा, तो खुदा को पहले ही से पता था। और इसलिए यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि तुम जो मसीह में हो हादसाही पदेश नहीं है बल्कि क्या है, पेशतर से मुकरर किए गए थे। इसलिए हमें इस बात को समझने के लिए क्या करना होगा जी, उसमें पेशतर से चुने गए हैं और किस में चुने गए हैं जी, मसीह में। जब हम यसाया 42:5 देखते हैं तो चुना हुआ कौन है जी, यीशु मसीह है। यसाया 42:5 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यसाया नबी इस भेद को और वाज़ह तौर पर बयान करता है कि जो उस चुने हुए मसाशुदा मसीह में हैं वो क्या है जी, पहले से मुकरर किए गए हैं। ये ऐसे कह सकते हैं जी कि यीशु मसीह पर जो एतकाद रखेंगे, जैसे मसीह चुना गया था कि वो दौद की असल और नस्ल से होगा, जो उस पर ईमान लाएंगे उनको खुदावंद खुदा क्या करेगा, उनमें अलहदा कर देगा। और इसलिए यसाया 42:5 जब हम देखते हैं तो वहां पर उसकी ये झलक हमें मिलती है। आपको याद दिलाना चाहता हूं यसाया नबी का सहीफा टोटल कितने बाप है जी, 66 है। 66 के 66 बाप हम एक ही मिनट में मुतालिया कर सकते हैं। और 66 के 66 बाप क्या है जी, पूरी बाइबल का खुलासा है। पहले 39 बाप पढ़ते हैं तो हम पहले बाप को पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है कि जी गधा अपने मालक की चरनी को और बैल अपने मालक को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे भूल गए। पहले 39 बाप क्या है जी, पूरी 39 किताबें जो पुराने अहदनामा की हैं उनका क्या है जी, खुलासा या समरी है। अगर आप पहले 39वें बाब को पढ़ें और पहली 39 किताबों का मुतालिया करें तो पहला बाब क्या है जी, पैदाइश की तरफ इशारा है। और अगर आप ऐसे ही बाब बा बाब पढ़ते आए तो 39 के 39 बाब 39 किताबों का क्या है जी, एक सादा समरी या मजमुआ है जिसमें हम पूरी बाइबल को देख सकते हैं। और जब हम नए नामा में आते हैं 27 किताबें हैं, 39 में 27 डाल दें तो कितनी हो जाती हैं जी, 66 हो जाती हैं। और जब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मत्ती की इंजील कहां से शुरू होती है, मत्ती की इंजील किनको लिखी गई थी जी, यहूदियों को, किनको लिखी गई थी जी, और मत्ती की इंजील यीशु को क्या पेश करती है, यहूदियों का बादशाह। और जब हम यसाया नबी का सहीफा देखते हैं, जब हम उसका 40वां बाब देखते हैं तो 40वां बाब क्या है जी, मत्ती की अंजील की शुरुआत है, मत्ती की अंजील की शुरुआत है। जब हम 40वें बाब को देखते हैं तो लिखा है, तसल्ली दो मेरे लोगों को, तसल्ली दो, तुम्हारा खुदावंद फरमाता है, यरूशलम को दलासा दो, उसे पुकार कर कहो उसकी मुसीबत के दिन जो जंगों व जदल के दिन थे गुजर गए, उनके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला धन दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज आती है, बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदावन के लिए शहरा को हमवार करो, हर एक जो नशीस्त है ऊंचा किया नशेब ऊंचा है ऊंचा किया जाएगा, हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, हर एक टेढ़ी चीज सीधी की जाए, हर सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाएगी। और यहाँ पर हम मत्ती की इंजील के पूरे पैगाम को देखते हैं, यहन्ना आता है जिसके बारे में मलाकी का सहीफा, और यहाँ पर 40वें बाब में नबूवत है कि खुदावन खुदा फरमाता है कि मैं उसकी राह तैयार करने को उसके आगे भेजा गया हूँ कि खुदावन की राह सीधी करो, उसके लिए सीधे बनाओ, और क्या है जी, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, और हर एक घाटी भर जाएगी। और यहां पर जब 40वें बाब को पढ़ते हैं तो क्या है जी, ये 40वां बाब मत्ती की झील की पूरी क्या है जी, समरी है। यहां पर 40वां बाब आने वाले बादशाह के बारे में बात करता है, मत्ती के पहला बाब से लेकर पूरे 28 बाब क्या है, यहूदियों का बादशाह, उसका नाम क्या रखेंगे जी, एमैन वो रखेंगे, खुदा हमारे साथ है, वो यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। इसलिए 41वें बाब को जब हम देखते हैं तो वो क्या है जी, मत्ती के बाद क्या आता है जी, मरकस की इंजील। और जब हम मरकस की इंजील को पढ़ते हैं तो इसे पूरे 41 के 41 बाब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावन खुदा इसराइल को यकीन दिलाना चाहता है, मरकज को खुदावन यीशु मसीह को कैसे बयान करता है जी, इब्ने आदम ऐसे बयान करता ना जी। मत्ती की अंजील यहूदियों को लिखी गई कि यीशु यहूदियों का बादशाह है, मरकज की अंजील तमाम गैर अकवाम को लिखी, रोमियों को यूनानियों को लिखी गई कि वो क्या है जी, इब्ने दाऊद है। और इब्ने दाऊद का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं 41वें बाब में और उसके बाद फिर दानियल की किताब में कि हमने जो आला जात को देखा है वो आदम जात की मानद है, और वो आदम जात कौन है जी, इब्ने दाऊद यानी कि यीशु मसीह। और जब 42वें बाब को देखते हैं तो 42वां बाब क्या है जी, इब्ने दाऊद के बाद लूका उसे क्या बयान करता है जी, मत्ती मरकस और लूका, खुदा का खादम, खुदा का बेटा, खुदा का सर्वंट। और 42वें बाब को जब हम देखते हैं, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उसमें डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। और यसाया 66 का और यसाया 42 का और फिर लूका की इंजील का शुरुआती पहला पैगाम क्या था? यीशु मसीह ने जब बियाबान में से वापस आकर कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए चुना कि गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बनाई और कुचले हुओं को आजाद करो। सो 40वें बाब से लेकर आखिर तक 66वें बाब तक क्या है जी? नए नामे की एक एक किताब का खुलासा है। इसलिए आपकी 66 किताबें क्या है जी? यसाया नबी का 66 किताबों का क्या है जी? बाबों का मजमुआ है, अगर आप इसे बड़े फिक्र के साथ मुतालिया करें। सो 42वें बाब में वो क्या है जी? मेरा बरगजीदा। बरगजीदा किसे कहते हैं? चुना हुआ, अलहदा किया हुआ, मखसूस किया हुआ। और इसीलिए इफ़सियों एक बाब ने उसकी चौथी आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है? चुनाचे उसने हमको बनाई आलम से बेशतर उसमें चुन लिया। चुने हुए में हमको क्या कर लिया गया जी? चुन लिया। जिसको बरगजीदा ठहराया था उसमें हम सबको क्या कर दिया जी? बरगजीदा कर दिया, अपनी नजदीक क्या किया है जी? मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। सो हम चुने गए हैं, हम बरगजीदा किए गए हैं और क्या किए गए हैं जी? मोहब्बत में पाक किए गए हैं। ये है जी जो काम बाप ने किया है। चौथी आयत में ये क्या है जी? बाप की तरफ से इलेक्शन है। इलेक्शन के लिए क्या चुना जाता है जी? कैंडिडेट चुना जाता है। और यहां पर जो लव्स इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है, अब 42वें बाब में जब उसको लफ्ज बरगजीदा को पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कहा गया है माय इलेक्ट वन से क्या है जी? जिसका इलेक्शन हुआ, जिसका चुनाव किया गया। जब चुनाव किया जाता है तो उसको क्या की जाती है जी? पोजीशन दी जाती है। और यीशु मसीह को जब तमाम मखलूक में, तमाम तखलीक में, तमाम कायनात में कोई उस जैसा ना मिला कि इस काबल हो के बने नू इंसान के कुफारे के काबल ठहरे, तो उसका चुनाव किया गया। और जैसे यसाया 6 बाब में कहा गया है कि कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? तो यीशु ने अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए क्या किया जी? उसका बरगजीदा बना, उसका चुनीदा बना, उसके इलेक्शन में वो क्या हुआ जी? मुंतखब हुआ। और उसमें क्या किए जाते हैं जी? हम सब चुने जाते हैं, उसके बगैर हमारी कोई पहचान नहीं। सो इसलिए ये बात जो हुई है जी 4 आयत में, चिनाचे उसने, उसका लफ्ज किसके लिए है जी? खुदा के लिए। यहां पर बड़ी अहम बात है कि उसको और इसको और उसका या उसमें किसकी बात हो रही है। जब हम ग्रामर को देखते हैं, चिनाचे उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसमें चुन लिया। उसने बाप की तरफ, उसमें मसीह में, और क्या किया गया है जी? ताकि हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुख्तसर डिनोमिनेशन नहीं, जैसे बहुत सी एक तालीम पाई जाती है, उसमें जो तालीम पाई जाती है वो क्या है जी? थियोलॉजी का जो इंग्लिश टर्म बोला जाता है वो उसे कहते हैं जी लिमिटेड अटोनमेंट। लिमिटेड अटोनमेंट के बारे में किसी ने सुना है जी? लिमिटेड अटोनमेंट को क्या कहते हैं? उसका मतलब है जी सिर्फ महदूद कफारा, कि जो कफारा दिया गया था वो महदूद लोगों के लिए था, चुने हुए लोगों के लिए था, सिर्फ कबीलों के लिए था और मुख्तलिफ लोगों के लिए क्या है जी? ये महदूद कफारा था, उसे क्या कहते हैं? लिमिटेड अटोनमेंट। लिमिटेड महदूद हो गया, अटोनमेंट किसे कहते हैं जी? कफारे को कहते हैं। लेकिन जब हम बाइबल की तालीम को देखते हैं तो बाइबल क्या करती है जी? यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 में क्या लिखा है? ऐसे लिखा है शायद, क्योंकि खुदा ने कुछ लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या लिखा है वहां पर? खुदा ने दुनिया से। सो आपसे सवाल है, यीशु मसीह कितने लोगों के लिए मरा? यीशु मसीह ने कफारा कितने लोगों के लिए दिया? यीशु मसीह के लहू ने कितने लोगों के गुनाह माफ किए? महदूद के तो नहीं। تو اس کا مطلب ہوا جو رہی ریل تھیالوجی ہے, صحیح علم الہی کی تعلیم, وہ کیا ہے جی؟ انلمیٹیڈ اٹونمنٹ, لا محدود کفارہ, ماضی کے لیے, حال کے لیے, مستقبل کے لیے, چاہے اس کا کوئی بھی کلر ہو, کوئی بھی زبان ہو, کوئی بھی قبیلہ ہو, کوئی بھی پہچان ہو. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی, ایسے لکھا نا جی, جو کوئی, یہ نہیں لکھا کہ کوئی کوئی, کیا لکھا ہے؟ جو کوئی. اس لیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں لفظوں کو بہت اہم طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. سو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس میں بنائے عالم سے, یعنی کہ خدا میں, پیشتر سے اس میں چن لیا, یعنی کہ مسیح میں, تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے, یعنی کہ ہر کوئی, جمع کا لفظ ہے, ہم کا ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ہم اس کے نزدیک محبت میں کیا ہو جی؟ پاک اور بے عیب ہو. سو یہ ہے جی پہلی روحانی برکات میں سے. جو چوتھی آیت کیا ہے جی؟ ہم کو اس نے چنا, ہم اس کے پاک محبت کے وسیلہ سے نیک یا پاک ہیں, اور کیا ہیں جی؟ بے عیب ہیں. اور پانچویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اس نے, اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا. چنا اور مقرر کیا کہ ہم, کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کے کیا ہوں جی؟ لے پالک بیٹے ہوں. لے پالک بیٹے یعنی کہ اڈاپٹڈ, کسی کو اڈاپٹ کیا جانا, اور اڈاپٹ کیا ہوا بچہ اپنا نہیں ہوتا, کسی اور کا ہوتا ہے. اس لیے جب خدا نے انسان کو بنایا, وہ گناہ کی غلاموں کی منڈی میں جب کیا اس کی نلامی کی گئی کہ وہ اس میں گر چکا ہے, تو اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کیا کیا جی؟ یسوع مسیح نے کہا کہ میں کیا کروں گا باپ, تو اپنے بیٹے کو بھیج تاکہ بہت سے بیٹے بیٹیاں تیرے ہو جائیں. اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ ہم اس کے لے پالک بیٹے ہو جائیں. اور لے پالک بیٹے ہونے میں کیا ہے جی؟ بہت سے مذہبوں میں یا مذہبوں میں کیا ہے جی, جو لے پالک کا حصہ یا میراث یا ورثہ پایا جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے جب اسرائیل میں تھے دعا کی کہ خداوند خدا اگر تو چاہتا ہے کہ ہم کو بیٹا دے تو ہم اس کی پرورش کریں گے, اسے سنبھالیں گے, اس کی رہنمائی کریں گے. اور اسرائیل میں ہم نے دعا کی, اور جب واپس آئے تو 6 مہینے کے بعد میرے چھوٹی بھائی کے ہاں بیٹا ہونے والا تھا. خدا کے پاکرو نے اس کی بیوی پر ظاہر کیا کہ جو پیٹ میں تیرے بیٹا ہے یہ پادری فیصل اور اس کی بیوی کو دے دے. اور اس نے آ کر جب ہم کو بتایا تو ہم حیران ہو گئے, کیونکہ جو دعا ہم نے اسرائیل میں کی تھی وہ صرف میرے اور میری بیوی کے درمیان تھی, کیونکہ میری بیوی کے پیٹ میں کینسر پڑنے کی وجہ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے ہم نے چاہا کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے تو ہمیں کیا دے؟ بیٹا دے. اور خدا نے میرے بھائی کی بیوی پر جب ظاہر کیا, انہوں نے مجھے بتایا تو میری بیوی نے کہا کیا تم نے کسی کو بتایا تھا اس دعا کے بارے میں؟ میں نے کہا نہیں, صرف تو, میں اور یہوہ خدا جانتا تھا جو دعا ہم نے اسرائیل میں ہیکل سلیمانی کی پچھلی دیوار پر کھڑے ہو کر کی تھی. تو اس نے کہا کہ خدا نے اپنی دعا کا جواب دے دیا ہے. اور جب اس کی پیدائش ہوئی 5ویں مہینے میں, جب اس کی پیدائش ہوئی 5ویں مہینے کی 8 تاریخ کو, تو ٹائم آ گیا جیسے زکریہ پر خدا کے فرشتے نے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا, اس کا نام یوحنا رکھنا. اس نے شک کیا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کی داہنی طرف کھڑا رہتا ہوں, اور تو مجھ پر سوال اٹھاتا ہے, اس لیے تو چپ کا رہے گا جب تک اس کا نام رکھنے کا, پیدائش ہونے کا وقت. سو ہم دعا کرنا شروع کر دی کہ خدا خدا تو کون سا نام چاہتا ہے کہ ہم رکھیں. سو جب اس کی پیدائش ہوئی تو پھر میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں گے, اسرائیل جان رکھیں گے. اور اس نے کہا کہ یہ بڑا خطرناک نام ہے پاکستان میں, اس سے پوری دنیا میں اس سے لوگ گھن کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جو اسرائیل کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ہمارے بیٹے اسرائیل کی بھی حفاظت کرے گا, تو اس کا نام ہم نے اسرائیل رکھا. اسرائیل رکھا. اور یہ کیوں ساری بات ہو رہی ہے؟ بے بالک ہونے کی. تو یہاں پر جب ہم اڈاپشن کا سلسلہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں کے رواج کے مطابق جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے اس کو میراث میں کچھ حصہ نہیں ملتا. میں نے کہا جی یہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہوگا, بائبل مقدس کے مطابق ہمارے لیے بڑی زبردست تعلیم ہے, بڑی زبردست تعلیم ہے. یہ ہے اسرائیل, یہ اوپر دیوار کے اوپر میں نے لکھا اور اس کے اوپر وہ کوشش کر رہا تھا اسرائیل جان لکھنے کی. یہ کچھ دن پہلے تصویریں اوپر چھت پر کھینچی. تو میں نے فقیل کو کہا کہ جی ہمارا جو مسیحی سلسلہ ہے اس میں لے پالک بیٹے کا کیا ہے جی حق اور میراث کیا ہے جی لازمی ہے. میں نے کہا کہ مثال کے طور پر جی خدا نے مسیح یسو میں ہر بنی انسان کو جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کا لے پالک بیٹی اور بیٹا بن جاتا ہے, اور ہمیں کیا ہے جی آسمان پر میراث ملتی ہے. اور جب یسو بادشاہی کرنے کو واپس آئے گا ہر ایک کے کام کے موافق کو بدلہ ملے گا اور ہر ایک کو اس کی بادشاہی میں میراث ملے گی. اگر مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر کوئی میرے راس باز بندے کو ایک پیالہ پانی ہی پلا دے تو آسمان پر وہ اپنا اجر نہیں کھوئے گا. اگر کسی کو کچھ کام کرنے کو دیا گیا ہے تو اس کو ایک کو پانچ شہروں پر, دوسروں کو سات, دس شہروں پر, ہر ایک کو اس کا بدلہ ملتا ہے. لے پالک ہوتے ہوئے خداوند خدا مسیح میں ہمیں اپنی میراث بنا لیتا ہے, اس لیے ہمیں سب کچھ حاصل ہے. اور جب ہم اسے اڈاپٹ کریں گے جو کچھ بھی ہمارا مال متا ہے وہ سب کیا ہوگا جی ہمارے بعد اس کا ہوگا جو اسرائیل جان ہمارا کیا ہے جی بیٹا ہے. اور یہاں پر پالوس رسول یہی بات کر رہا ہے کہ ہمیں مسیح میں خدا نے اڈاپٹ کیا ہے. جو کچھ خدا کا ہے وہ ہمارا ہے, جو مسیح کا ہے وہ ہمارے بڑے بھائی کا ہے وہ ہمارا ہے, لیکن بہت دفعہ کیا ہے جی اسے استعمال نہیں کیا جاتا. سو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں نے تم کو کیا کیا ہے جی لے پالک بیٹے ہونے کا درجہ بخشا ہے تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو. میں آپ کے لیے چھٹی آیت کو پڑھ رہا ہوں, جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. یہ ہے خدا کی طرف سے جو بخشش, روحانی برکات آسمانی مقاموں پر ہم سب کو حاصل, لے پالک ہونا. ہم جتنی چاہے مرضی دفعہ, خدا نہیں چاہتا, خدا یہ توقع نہیں کرتا کہ ہم ہر روز مصرف بیٹے کی طرح زندگی بسر کریں, لیکن جب جب ہم اس مصرف بیٹے کی زندگی کا راستہ چناؤ کرتے ہیں کہ اس پر چلیں اور ٹھٹھے بازوں کے ساتھ بیٹھیں اور خطا کاروں کی مجلس میں شامل ہوں اور اپنی ساری پونجی اور مال اور اپنی حیثیت اپنا مقام جب کھو دیں اور جب ہوش میں آئیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں تو میرے باپ کے نوکروں کو فراز سے روٹی ملتی ہے, میں واپس جاؤں گا. اور جانے سے وہ پہلے کہتا ہے میں کہوں گا کہ اے باپ میں تیرا اور آسمان کی نظر میں گناہگار ٹھہرا. اور وہ ساری ریہرسل کر رہا ہے اور کرتے کرتے جب اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے تو باپ اسے دور ہی سے دیکھ کر بولنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا اور آسمان کا گناہگار ہوا. خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ باپ اس کو گلے لگاتا ہے, اس کا منہ چومتا ہے, نوکروں سے کہتا ہے کہ نئی پوشاک لے کر آؤ, انگوٹھی لے کر آؤ, نیا جوتا لے کر آؤ, پلا ہوا بچڑا اس کے لیے کیا کیا جائے جی مہیا کیا جائے, قربان کیا جائے, دعوت کی جائے. ویسے ہی خداوند خدا میں ہم سب کو کیا ہے جی جب جب ہم بھول جاتے ہیں اپنے مقام, اپنے درجے کو, اپنی حیثیت کو, خدا کہتا ہے نہیں پوشاک لے کر آؤ, انگوٹھی لے کر آؤ. اور پرانے عہد نامہ میں ہم یوسف کو جب دیکھتے ہیں فرعون کی انگوٹھی پہنائی گئی تو وہ کیا تھا جی؟ مصر میں فرعون کی قدرت اور طاقت اور اختیار رکھنے والا دوسرا فرعون تھا. نئے عہد نامہ میں مصرف بیٹے کو جب باپ نے اپنی انگوٹھی پہنائی تو اسے کیا کہا؟ جو کچھ تو نے سب کچھ کھو دیا تھا میں نے تجھے دوبارہ لے पाला है, ले पालक लिया है, तुझे अडॉप्ट कर लिया है, तुझे कबूल कर लिया है और सब कुछ उसका दोबारा बहाल कर दिया। सो मसीह में खुदा हमें क्या करता है जी, सब कुछ जो खुदा का है वो हमारा है। इसलिए आपको एक राज बताना चाहता हूं, जो हमारा है उसका ऐलान और इस्तेमाल करना शुरू करें। जो हमारा है उसका ऐलान और इस्तेमाल करना शुरू करें। वो कैसे होगा? बरकत मांगना शुरू कर दें, बरकत मांगना एक दूसरे के लिए शुरू कर दें, और जब बरकत मांगेंगे तो बरकत जारी होगी, क्योंकि हमारे मुंह में खुदा ने क्या रखा है जी, कुदरत को रखा है, बरकत को रखा है। हालेलुया। सो ये पहली चार आयत क्या है जी, बाप की तरफ से। उसके बाद दूसरी बेटे की तरफ से। इफिसियों एक बाप उसकी सास से 12 आयत को देखते हैं। आपको बताना चाहता हूं, यूनानी अब्रान में, यूनानी जबान में जब हम इफिसियों पहली आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ते हैं, तो इफिसियों का जो ये पैरा है हम इसे आयतों में डिवाइड करते हैं, लेकिन असली जबान में ये क्या है जी, एक सेंटेंस है जिसे कहते हैं एक फिकरा। जब पालूस रसूल ने इसे पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो एक ही सांस में उसने ये सारी बातें कही होगी और कलम बंद किया होगा, और उसने इसको जब लिखा होगा तो अजीब खुदा के रूह की कैफियत होगी। हो सकता है कि वो कैद खाना हिल गया हो जब उसने ये मुकाशवा कलम बंद करना शुरू किया। सो इसलिए आए सातवीं आए से देखते हैं कि यीशु मसीह में हमें क्या हासिल है। यीशु मसीह में क्या कहता है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी, यानी कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। याद है अय्यूब ने क्या कहा था, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, आखिर को एक दिन वो जमीन पर खड़ा हो जाएगा। अपने बदन के इस तरह बर्बाद होने के बावजूद भी मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। ये एक आयत क्या है जी, जबरदस्त मकाशवा है। वो अपने निजात दहिंदा को जानता है, वो जानता है कि वो आएगा, वो जानता है वो अदालत करेगा, वो जानता है वो क्या करेगा, अजर और बदला देगा, और वो कहता है मकाशवा बाप, इसने बाप की सारी आयत को अपनी आंखों से उसे देखूंगा। और खुदा इंसानों के दरमियान क्या होगा जी, खैमा जन होगा। बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरत सच्चाई है जी। इसलिए सातवीं आयत में वो कहता है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी। मखलसी बड़ा जबरदस्त, बड़ा ही जबरदस्त सच है। एक मेरे आज साथ निकालें, ये बड़ी ही जबरदस्त सच्चाई है। पहला करंथियों उसका पहला बाब जब हम पढ़ते हैं उसके आखिरी ही आयत को, पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी जब हम 30वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यहां पर पालूस रसूल ने जो मकाशवा लिखा है वो बड़ा ही जबरदस्त है। इस सच्चाई को जब हम पढ़ते हैं वो कहता है, लेकिन तुमको उसकी तरफ से मसीह में, बाप की तरफ से मसीह में, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। उस पर कौन सी रूह होगी जी, हिकमत और हिर्द की रूह, और कौन सी रूह होगी जी, मार्फत और हिर्द की रूह, और खुदावंत के खौफ की रूह। यहां पर क्या है जी, लेकिन तुमको उसकी तरफ से मसीह में, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी के रास्तबाजी। रास्तबाजी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है यूनानी जुबान में, इसे जब रूमी कहते हैं जी, कटहरे में पढ़ा जाए या सुना जाए तो उसे कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है जी, रास्तबाज, जिससे शुरू होता है लफ्ज जस्टिफिकेशन। کہ یہ بے عیب ہے, یہ بے داغ ہے, یہ پاک ہے, یہ مقدس ہے, یہ برگزیدہ ہے, اس کی تفشیش کی گئی ہے, اس کی ساری باتوں کو دیکھا گیا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں نکلا, اور اس کو کیا ٹھہرایا گیا ہے جی, راست باز یا خداوند کی راست بازی مقرر کرنا. وہ ہماری خدا کی طرف سے کیا ہے جی, حکمت ٹھہرا, راست بازی ٹھہرا, اور پاکیزگی, پاکیزگی اور مخلصی. وہ ہماری مخلصی ہے, ہمارا رڈیمر ہے, وہ ہمارا کیا ہے جی, چھٹکارا دینے والا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے, تاکہ, انگلش میں سے کیا کہتے ہیں, تاکہ پرپس کلوزٹ, یعنی کہ جو جملہ پیچھے گیا گیا ہے اس کی تفصیل کو بیان کرنے کی, اس کی قدرت کو, اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے, تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو, کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے, کسی اور بات پر نہیں. سو اس لیے ہمارا فخر, ہمارا تکبر, ہمارا جتنا بھی جو کچھ بھی ہو, کس پر ہو جی, مسیح پر ہو. سو مسیح میں ہمیں کیا کیا گیا ہے جی, اس کے خون کے وسیلہ سے جسٹیفائی ٹھہرایا گیا ہے, علیحدہ کیا گیا ہے, اور مخلصی یعنی کہ گناہوں کی معافی, اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دنائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کی. سو ہمیں حکمت اور دنائی دی گئی ہے, ہمیں مخلصی دی گئی ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کیا گیا ہے. اور نویں آیت میں لکھا ہے, اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا. امید ہے کہ جیسے زبور 103 میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کام بنی اسرائیل پر اور اپنی راہیں موسیٰ پر ظاہر کی. آج بہت سے لوگ خدا کے کام دیکھنا چاہتے ہیں. بنی اسرائیل نے جتنے کام دیکھے اگر ان کو گننا شروع کر دیں, انہوں نے کیا دیکھی جی, وہ 10 آفتیں دیکھی جو مصر میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ فرعون خدا نہیں, موسیٰ کا, ہارون کا, مریم کا خدا زندہ خدا ہے. انہوں نے وہ تمام معجزات دیکھے, انہوں نے اس کے بعد پھر دیکھا بیابان میں پانی کو, چٹان میں سے کڑوے پانی کو میٹھا ہوتا وہ دیکھے, دن کے بادل میں خدا کی حضوری کو, رات کے آگ کے ستون میں خدا کی معموری کو, خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہوا, فرشتوں کی خوراک کھلاتا ہوا نظر آتا ہے. اور زبور 103 کو جب پڑھتے ہیں, ایک آیت کیا کرتی ہے جی, خدا اس نے اپنے کام بنی اسرائیل پر اور اپنی راہیں موسیٰ پر ظاہر کی. میں چاہتا ہوں آپ کی اور میری خواہش ہونی چاہیے کہ خداوند اپنی راہیں, اپنا ارادہ, اپنی مرضی, اپنا مکاشوا, اپنا بھید, اپنا دل ہم پر ظاہر کر, تاکہ جو تعلیم تو دیتا ہے ہم اسے جانے اور تو ہم پر ظاہر ہو. کیونکہ اگر ہم اسے جانتے ہوں گے, اس کی راہوں سے واقف ہوں گے, اس کے کام خود بخود ظاہر ہوں گے. بہت سے لوگ کام دیکھنا چاہتے ہیں, معجزات دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی راہوں سے دور ہو جاتے ہیں. مجھے بڑی پیاری بات لگتی ہے, جب سلیمان اور خدا کی بات ہو رہی تھی, تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں, تو نے دولت, مان, دھن, شہرت, عزت سب کچھ میرے باپ دادا کو دیا, مجھے کیا دے, حکمت دے. اور اس نے حکمت دی, تو حکمت کے ساتھ مٹی کو سونا بنانا اسے آ گیا, اور کو کسی شے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, خدا نے اس کے لیے آسمان کو کھول دیا کہ وہ حکمت کا بادشاہ ٹھہرے. اگر وہ کہہ دیتا جی 100 ملین ڈالر دے دو, تو 100 ملین ڈالر ہوتا تے عقل نہ ہوتی, تے پھر کی ہونا سی جی, کچھ بھی نہیں ہونا سی. ہمیں دعا کرنی چاہیے, خداوند ہم پر اپنی مرضی کو ظاہر کر, جیسے ہم پڑھتے ہیں, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے, شخصی طور پر ہمیں کہنا ہو, ہماری زندگی میں بھی پوری ہو, نہ صرف زمین پر. سو یسوع مسیح میں اس نے اپنے ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا, اپنے ارادے کو जिसे अपने आप में ठहराया था। क्या जबरदस्त सच है जी। मैं इसराइल के साथ जब बात करता हूं तो हम सीख रहे हैं एक दूसरे की जुबान। वो इंग्लिश भी बोलने की और इंग्लिश समझता है और उर्दू में जवाब देता है, हालांकि 18-19 माह का है। तो उसके साथ जब गुफ्तगू होती है तो मैं उसे कहता हूं जाओ जाकर पानी लेकर आओ, वो जाता है, जाओ जाकर ये करके आओ, आता है। और हम उसे एक अबरानी जुबान का हुक्म सिखा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊक, ऊक, ऊक लफ्ज उसे सिखा रहे हैं, जो क्या है जी, अबरानी जुबान में सबसे सख्त लफ्ज है, जिसका मतलब है डबल नेगेटिव, नहीं नहीं। जब जब वो सीढ़ी की तरफ जाता है हम कहते हैं ऊक, जब जब वो सिलेंडर को हाथ लगाता है जिसमें से गैस जो क्या है पानी को गर्म करती है, ऊक, उसे पता चल जाता है कि नहीं, ये मेरे बाप और मां की मर्जी नहीं कि इस काम को किया जाए। और यहां पर क्या लिखा है, जैसा अपने आप में ठहराया था हम पर जाहिर किया। यीशु मसीह चाहता है हम पर बहुत सी भेद की बातों को जाहिर करना। और आगे क्या लिखा है जी, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाब वो आसमान की हो ख्वाब जमीन की हो। और लिखा है उसी में, गौर करते रहे, उसमें, उसी में, उसमें, उसके वसीला से, उसके बाइस, उसने 11वीं आयत में लिखा है उसी में हमको भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, मिरास बने। हम सब की मिरास है और सवाल यह है कि हम उस मिरास को दुगना करेंगे या खराब करेंगे, ये हम पर है। यीशु मसीह ने जो कुछ हो सकता था, जैसे यर्मिया के सहीफे में लिखा है, यर्मिया के सहीफे में जब पढ़ते हैं, उसका हवाला मेरे जहन में नहीं आ रहा, 12 बाब में यहां कहीं पर है, वहां पर बात हो रही है कि वो जोरावर आदमी हक्का बक्का बाहर खड़ा है और वहां पर वो मसीह की नबूवत है कि वो अपनों में आया, उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया और वो क्या कहता है कि जी मैं और क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए मैंने नहीं किया। ये बनी इसराइल के ऊपर खुदा की क्या है जी, तवक्को और इजहारे क्या है जी, गम है। हमको खुदा ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, मिरास दे दी है। अब मिरास को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे वो एक को 2 तोड़े मिले थे ऐसे ही जी, एक को 5 और एक को 1। 2 तोड़े वाले ने क्या किया था जी, 2 और बना ले। 5 वाले ने क्या किया, 5 और एक ने क्या किया, उसे दबा लिया। उनको मिरास दी गई थी कि उनसे कमाई की जाए, हमें भी मिरास दी गई है। जैसे पादरी दानियल ने कहा हम दुल्हन हैं, हमें क्या करना है जी, पैगाम देना है, दावत देनी है लोगों को। सो इसलिए हमारी मिरास हम पर है कि हम उसे कितना बढ़ाएंगे। कईयां दे 25-25 किले होंदे, 25-25 किले वेच के ते की करदे आ जी, गलियां च आ जांदे। ते कईयां दा किला वी नहीं हुंदा लकड़ी दा, ते ओह की आ जी जमीन दे किले बना लैंदे आ, ऐसा ही है जी। हमें आसमानी मिरास दी गई है, इसलिए ये हम पर है कि हम कौन हैं, किसके हैं और हमारा क्या है, उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। पौलुस रसूल कहता है ये मसीह में तुम सबको मिला है। और 12वीं आयत में कहता है ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हों। सो ये होगी जी बेटे की तरफ से। और आखिरी हिस्सा क्या है जी, खुदा पाक रूह की तरफ से। सो जब हम 13 और 14 आयत को पढ़ते हैं तो खुदा पाक रूह की तरफ से जो हमें बातें, जो सच्चाइयां हमें सीखने को मिलती हैं जी, ये बड़ी ही लाजवाब हैं और इन पे बहुत ज्यादा बरकत है। अगर कोई निकाल ले तो जरा पढ़े जी 13-14 आयत को, खुदा में बरकत दे आपको जी।
और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मुदार रूह की मोहर
लगाई,
वही खुदा की मलकियत की मकदसी के लिए हमारी मेराज का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो।
आमीन। शुक्रिया जी। खुदा के पाक रूह का जो काम है वो क्या है जी? तहफ्फुज़ है। सो हमें खुदा का तहफ्फुज़ क्या मिलता है जी? 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो क्या है जी लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक मोहदार रूह की मोहर लगी। इस आयत को अगर हम गौर से पढ़ें तो हमें पता चल जाता है, बहुत दफा लोग पूछते हैं जी रूहुल कुद्दस कब मिलता है। ये आयत वाज़ेह तौर पर बयान करती है, इसकी ग्रामर उर्दू में, इंग्लिश में, यूनानी में एक ही है। और इसके जब हम सारे सिलसिले को पढ़ते हैं, जरा दोबारा पढ़ेंगे, उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना। सो यहां पर रुकेंगे, इसको इधर उधर छोटे छोटे पीस करके सीखेंगे। उसी में तुम पर भी, माजी की बात हो रही है, तुम पर भी क्या हुई थी जी? जब, वक्त की बात हो रही है कि माजी के उस वक्त में जब तुमने कलामे हक को सुना था। और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? रोमियो 10 बाब उसकी 18 आयत में, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। सो किसी ने तुमको जब खुशखबरी का पैगाम सुनाया था, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, कि तुमको बताया कि भाई अगर खुदावन यीशु पर ईमान लाओगे तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनोगे, और अगर खुदावन यीशु पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा का कहर तुम पर रहेगा। बहुत दफा लोग यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन यूहन्ना 3:36 को नहीं याद रखते, जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर खुदा का कहर रहता है और वो जिंदगी को ना देखेगा। So, यहां पर पौलुस कहता है तुम्हारी निजात की खुशखबरी थी, किसी ने बताया कि भाई पहले आदम में रहोगे तो मौत है, दूसरे आदम में आओगे तो जिंदगी है। या किसी ने कहा होगा कि भाई अगर तुम एक दफा पैदा हुए हो तो तुम दो दफा मरोगे, अगर तुम दो दफा पैदा हुए हो तो एक दफा मरोगे। और सुनने वाले ने कहा कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है कि एक दफा पैदा होने से दो दफा मौत आएगी, दो दफा पैदा होने से एक दफा मौत आएगी। और वहां पर कहानी शुरू होती है कि यहूदियों का, फकीयों, फरीसियों का एक सरदार निकोदीमस नाम शख्स यीशु के पास आता है और उसे कहता है कि खुदावंद खुदा, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, हम सच जानते हैं और इसलिए तेरी जो तालीम वो दुरुस्त है। और उसको यीशु मसीह क्या कहता है? तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। और वहां पर हैरानगी से कहता है कि अगर मैं पैदा हो चुका हूं तो क्या दोबारा अपनी माँ के पेट में जाना होगा? यीशु मसीह कहता है जो रूह से पैदा हुआ वो क्या है जी? रूह है। सो यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी, दूसरे लफ्जों में कि जब किसी ने तुमको कहा होगा कि यीशु पर ईमान लाओ तो तुम नए सिरे से पैदा होगे और तुम्हारी जिस्मानी पैदाइश के बाद तुम्हारी रूहानी पैदाइश होगी, इसलिए जब तुम मरोगे तो जिस्मानी तौर पर मरोगे, रूहानी मौत का मजा नहीं चखोगे। और अगर तुमने यीशु को कबूल नहीं किया तो तुम जिस्मानी तौर पर तो पैदा हुए, उसके बाद रूहानी मौत भी मरोगे, जिसे बाइबल मुकद्दस दूसरी मौत कहती है। इसलिए तुम क्या हुए जी? एक दफा पैदा हुए, दो दफा मर गए। तो जब तुमने ये खुशखबरी के पैगाम को सुना कि यीशु पर ईमान लाओगे तो क्या मिलेगा जी? पाक मौदा रूह की मोहर लगेगी। और मेरे साथ देखें ये मोहर क्या है जी? सिर्फ खास कबीले के लिए नहीं है। पहला ग्रंथियों जब हम उसका 13वां बाब देखते हैं, उसकी 12वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस सारी कैफियत को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि रूह कुद्दस कब मिलता है, कब मिलता है। पहला ग्रंथियों 12 बाब जब हम उसकी 12 आयत से पढ़ते हैं तो क्या कहता है? क्योंकि जिस तरह बदन एक है उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है। उसी तरह मसीह भी है। और 13वीं आयत में कहता है क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो खा यूनानी हो खा गुलाम हो खा आजाद हो एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। ये वो बात कर रहा है कि जब तुमने खुशखबरी का पैगाम सुना चाहे तुम यहूदी थे आजाद थे गुलाम थे काले थे पीले थे नीले थे चिट्टे थे गोरे थे जो भी तुम्हारी बैकग्राउंड थी तुम पर क्या किया गया जी पाक रूह का बपतिस्मा हुआ तुमको उसकी पहचान मिली कि उसके लेपाल खून खरीदे बेऐब उसके चुने हुए बनो। 13वीं आयत ये बयान करती है रूह कुदस का तहफ्फुज। और उसके बाद 14वीं आयत में क्या लिखा है जी 14वीं आयत में लिखा है वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास है। खुदा की मलकियत कौन है जी हम खुदा की क्या है जी मलकियत है खरीदे हुए। पहला करंथियों 6 बाब उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है 19 और 20 क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो अपने बदनों से किसका जलाल जाहिर करो जी खुदा का। तो यहां पर वो कहता है कि खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हम उसकी मलकियत हैं हम उसके खरीदे हुए हैं हम उसके ले पालक हैं हम उसके अलैदा किए हुए हैं जिनकी खलासी के लिए जिनके छुटकारे के लिए क्या है जी हमारी मेराज का बयाना क्या है बयाना है वो कौन है जी रूहुल कुदस बयाने के तौर पर दिया गया ताकि उसके जलाल की सताइश हो। इसलिए ये है जी खुदा बाप की तरफ से खुदा बेटे की तरफ से खुदा पाक रूह की तरफ से। और आगे है जी पालूस रसूल की दुआ हम इस पर रुकेंगे और खुदावंद के नाम को धन्यवाद कहेंगे। उसके बाद अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक करेंगे वरना दुआ में ठहरना चाहते हैं दुआ या सवाल जवाब तो ज़रूर करेंगे।